الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله میرے مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ ہر اتوار کی صبح ہمارا یہ پروگرام گھر اور معاشرہ اب مدنی چینل پر دیکھتے ہیں آج جو یہ ہمارا ہم نے موضوع لیا ہے پچھلے ہی دنوں سمجھ لیں کہ تقریباً ایک ہفتے کے آس پاس 10 محرم الحرام گزری ہے اور جب محرم کا مہینہ آتا ہے ایک تو یہ کہ اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ پھر فرسٹ محرم الحرام یہ یوم شہادت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں یعنی فرسٹ محرم ہی کو یوم شہادت فاروق اعظم ہوتا ہے اور پھر یہ جب اسلام کا پہلا مہینہ تو یہ فرسٹ ڈے بھی شہادت پھر 10 محرم الحرام کربلا میں کتنا بڑا ایک سانحہ ہوا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد شہزادے سیدزادے کس طرح بے دردی سے انہیں بھوکا پیاسا رکھ کے شہید کیا گیا تو دیکھیں دین کی خاطر انہوں نے کتنی بڑی قربانی دی اور دین اسلام یہ قربانی ہی کا درس دیتا ہے ہمارا ذوالحج کا مہینہ جو لاسٹ گزرا محرم سے پہلے یہ اسلامی سال کا لاسٹ مہینہ ہے اور مسلمان قربانی یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں جو قربانی دیتے ہیں کتنا بڑا وہ واقعہ ہے تو وہ بھی قربانی بیس کیا بنی اللہ کے حکم پر عمل بیٹا قربان کرنے چل پڑے پھر اسلامی سال کا 1445 ہجری یہ سٹارٹ ہو چکا ہے تو نیا سال جو شروع ہوا پہلی محرم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور کیسا شہید کیا گیا کہ نماز کی حالت میں آپ پر حملہ کیا گیا شدید زخمی ہوئے تو نماز پڑھ رہے تھے نماز کی حالت میں آپ پر شدید کسی نے وار کیا اور بالآخر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ جامع شہادت نوش کر گئے کیسی ان کی زندگیاں ہوا کرتی تھی کہ ایسی حالت میں بھی نماز کی فکر ہو رہی ہے پھر کربلا سے متعلق جو آج ہمارا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ واقعے کربلا سے کیا سبق ملا یعنی کیا لیسن ملا یعنی اتنا ہم سنتے ہیں نظر نیاز کرتے ہیں نظر نیاز کرنی چاہیے ایصال ثواب کرنا چاہیے اللہ کے پیاروں کی اچھوں کی یاد کرنی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک لیسن بھی تو ملتا ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین آج ہمارے معاشرے میں ہر بندہ اپنے حساب سے کسی بھی چیز کا مفہوم مضمون اپنے مطلب کا نکال لیتا ہے بالفرض ہمارا ٹاپک نہیں ہے لیکن اب کسی نے کسی کو تنگ کیا یار تم یزیدی ہو گئے ہو اور تم یہ ہو گئے ہو کسی نے کوئی وعدہ وفا نہ کیا تم کوفی ہو گئے ہو اور ہم تو حسینی ہیں تو ابھی اپنے طور پر یہ خود ہی نکال لیا تو حسینیت والے کام کون سے کیے اور پھر یزید ایسے کون سے کام کرتا تھا اس بد باطن کے یزید پلید کے وہ گندے سیاہ کارنامے کون سے تھے کہ جس کی وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور مدینہ منورہ جیسی مبارک سرزمین کہ آج کے دور میں بھی کوئی عاشق مدینہ جاتا ہے تو جاتا بھی تڑپتا ہوا ہے کہ میں آقا کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہا ہوں روتا بلکتا جاتا ہے اور ایک عاشق آج کے دور میں جب مدینہ منورہ سے پلٹتا ہے تو گویا اس کا کلیجہ پھٹ رہا ہوتا ہے کہ میں کریم آقا شفیق آقا مہربان آقا شفاعت کرنے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے رخصت ہو رہا ہوں جدا ہو رہا ہوں ودا ہو رہا ہوں ارے یہ تو پیدا ہی مدینہ میں ہوئے تھے مدینہ کی گلیاں مدینہ کے در و دیوار وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقتیں وہ خوشبوئیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں پلے بڑے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت ملی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گود مبارک میں حسنین کریمین کو بٹھاتے ان کا ماتھا چومتے انہوں نے کیسے مدینہ چھوڑا ہوگا آخر وہ کون سی چیز تھی کہ مدینہ منورہ جیسی مبارک سر زمین اور نانا جان کا قرب چھوڑ کر یہ قافلہ لے کر چل پڑے تو واقعہ کربلا سے کیا سبق ملا اس موضوع کو ہم لے کر آگے چلیں گے آج ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے دونوں سید صاحبان ہیں سید الحمدللہ بہت پیارے ہوتے ہیں میرے آقا کی آل میرے آقا کی اولاد تو آج بھی میرے آقا کے آل میں سے دو سید زادے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید ثاقب شاہ صاحب مدنی یہ ماشاءاللہ موجود ہیں سید قذافی شاہ صاحب مدنی ماشاءاللہ یہ موجود ہیں تو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے. تو سیدوں سے ہمیں محبت کیوں نہ ہو. میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ آل ہیں, یہ اولاد ہیں, تو اللہ والے جو ہیں وہ سیدوں سے بہت پیار کرتے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی واقعات ہیں, امیر علیہ سنت کے بھی کتنے سے واقعات ہیں کہ سیدوں سے پیار. تو الحمدللہ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ دونوں سید صاحب ہیں, دونوں عالم ہیں, دونوں بہترین دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں. تو ان سے بھی ہم سنیں گے کہ واقع کربلا سے کیا سبق ملا. سید ثاقب شاہ صاحب, یہ واقع کربلا, تو آج یزید کو کون اچھے الفاظ سے یاد کرتا ہے؟ اور یزید پلید کہتے ہیں اس کو, حکومت کی لالچ میں, مال کی لالچ میں اندھا ہو گیا, سمجھ لیں کہ اس نے کتنی بڑی مقصد ظلم اور زیادتی کی کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی آل کو, اولاد کو کس طرح بھوکا پیاسا رکھے, خاک و خون میں تڑپایا. لیکن وہ کون سی بیسکس تھی, وہ کون سے فیکٹرز تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ جیسی پاک سرزمین جہاں پیدا ہوئے, جہاں ان کی امی جان نے ان کو پالا, جہاں ان کے بابا جان کی گود میں یہ کھیلے, جہاں ان کے بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیگر صحابہ کرام, بلکہ خود آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا روضہ انور, تو یہ مدینہ شریف جیسی مبارک سرزمین چھوڑ کر گئے, تو آخر اسی کیا باتیں تھیں یزید پلید یا اس کی حکومت یا ایسے کون سے کارنامے تھے کہ یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور چل پڑے یہ مدینہ چھوڑ کر؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی صاحب, واقعہ کربلا کیوں رونما ہوا, کیا وجہ بنی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ پاک سے مکہ المکرمہ اور مکہ المکرمہ سے عراق کا سفر فرمایا؟ یقیناً آج ہم جب جاتے ہیں حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے, پلٹ کر آنا ایک عاشق کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے.
یہ فرما رہے ہیں,
اور بڑی مشکل ہوتی ہے کہ جس وقت ہم مدینہ پاک سے, یقین عاشقان رسول کی یہ کیفیت ہوتی ہے, پلٹ کر آتے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور ایک بھاری قدموں کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں,
دل پھٹ رہا ہوتا ہے,
بالکل پھٹ رہا ہوتا ہے. مدینہ سے واپسی بہت مشکل ہوتی ہے. یقیناً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی پیدائش وہاں پر, جن کے گھر کا دروازہ کھلے مسجد نبوی شریف,
اللہ اللہ,
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے پر کھیلنے والے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گھٹی دی,
گھٹی
دینے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی کیا شان ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھٹی دے رہے ہیں
کیا,
اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کھلاتے ہیں, بلکہ ان کا رونا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر گراں گزرتا. ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے سے گزرے تو آواز آ رہی تھی حسنین کریمین کے رونے کی, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اندر گئے اور فرمایا کہ فاطمہ ان کو چپ کرواؤ, آپ کو نہیں پتا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ان کا رونا. اس طرح کا مضمون ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ان کا رونا برداشت نہ کریں, حضور ان کو سینے کے ساتھ لگائے اور ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سونگے, جنتی نوجوانوں کا سردار بنائے. اتنی شانے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے. پھر جن کے نواسے ہیں انہی کے دین پر جب حملہ ہو جائے, اب یہ ان ہاتھوں میں پلنے کا, اب صلہ دینے کا وقت تھا کہ جن ہاتھوں سے اٹھے ہیں, جس مبارک زبان کو چوسا ہے, اب ان وفاؤں کو وفا کرنے کا وقت تھا کہ یزید پلید جو ہے یہ بدباطن سنگ دل سیاہ دل والا, اس نے وہ اعمال کیے کہ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خروج کرنا, نکلنا یہ ضروری ہو چکا تھا کہ یہ فاسق بھی تھا, شرابی تھا, زانی تھا اور کئی ایک طرح کے عیوب اس میں تھے, محرمات کے ساتھ جیسے اس نے نکاح کو جائز قرار دے دیا تھا, سود کا اعلانیہ طور پر لین دین کا معاملہ اس نے حلال کر دیا ہوا تھا, جائز قرار دیا ہوا تھا, اس کے علاوہ کتنے ہی وہ معاملات کے جو شریعت مطہرہ نے منع کیے تھے اس نے خود بھی کرتا اور دوسروں کو کرنے پر آمادہ کرتا تھا. اور اس ظالم نے, اس سنگ دل نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیاری مسجد ہے, مسجد نبوی شریف, اس میں اذان پر پابندی لگائی, اقامت پر پابندی لگائی, گھوڑوں کو مسجد نبوی شریف میں باندھا, اس قدر بے حرمتی کی. وہ سینگ کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جب مینڈا دنیا پر اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا, ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح فرمانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی فدیے میں مینڈے کو بھیجا, جنت سے مینڈا آیا تھا, وہ اس مینڈے کے سینگ, اس جنتی مینڈے کے سینگ کعبۃ اللہ کے ساتھ لگائے گئے تھے. इस संग दिल ने इस कदर संगरेजी की, इतने पत्थर बरसाए कि उन सींगों को जला दिया। मक्का मुकरमा की बेहरमती करने वाला ये बदबातिन है। और फिर अहले बैत अतहार पर जो इसने जुल्म और सितम की दास्तान रकम की, तारीख नहीं बुला सकती, ये सारे उसके अमाल हैं। लेकिन इससे पहले देखें कि एक दम क्या इसने इमाम हुसैन को फौरन कत्ल कर दिया माजअल्लाह, या कत्ल करने शहीद करने का ये ऑर्डर जारी किया, ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे क्या लॉजिक थी, क्या वजह थी कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला निकले? वो यही वजह थी कि इसने इस तरह के मामलात किए हुए थे, दीन में बिगाड़ पैदा करना चाह रहा था। अब इसे सबसे ज़्यादा ख़तरा ही इस बात से था कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला से, कि अगर इमाम हुसैन मेरी मान गए, मेरी बैत कर ली, तो अब क्या होगा? इसके नज़रिए के मुताबिक फ़ायदा ये होगा, मैं जो चाहूँगा मर्ज़ी करूँगा, जिस तरह की चाहे खुराफात इस्लाम में दाखिल कर दूँगा, जिस तरह की चाहे बिदआत को, जिस तरह ही की चाहे यूँ कहिए कि जो बुरे आमाल हैं मैं इस्लाम में दाखिल करना चाहूँ तो कर सकूँगा, अगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मान गए, मेरी बैत कर गए। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जानते थे कि अगर मैंने बैत की तो ये करेगा, और इमाम हुसैन इतना भी जानते थे अगर मैं नहीं मानूंगा तो ये बिगाड़ पैदा नहीं कर सकेगा। क्यों? अहले बैत अतहार के चाहने वाले उस वक्त भी थे। और फिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब कूफे वाले, और फिर पूरा ये एक वाकया है मुहर्रमुल हराम के इस मुबारक महीने, मदनी चैनल पर ये हमारे ये सिलसिले चलते ही रहे, और आशिकाने रसूल ने मदनी चैनल के नाज़रीन ने सुना भी। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब कूफियों ने बुलाया तो बैत के लिए बुलाया था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने जो 72 अफराद को लेकर ये मुख्तसर काफिला चला, तो वो जंग के लिए नहीं था कि आप जंग के लिए तैयार होकर गए, नहीं, आप जंग के लिए नहीं गए थे, बल्कि आप तो बैत लेने के लिए गए थे।
ख़वातीन लेके निकले,
जी जी, ये बच्चे हैं, भांजे हैं, भतीजे हैं, ख़वातीन हैं, दीगर जानसार हैं, वो सिर्फ क्या था कि बैत के लिए बुलाया गया था, आप बैत के लिए आए। वो फिर अलग बात है कि कूफियों ने बेवफाई की, जो हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अहद शिकनी की, आपका अहद तोड़ा, आपको शहीद कर दिया गया, तो ये फिर सारे मामलात है कि जो वहाँ पर फिर पहुँचने पर मजबूर किया कि जब आप करबला के, आपने चूँकि मुस्लिम बिन अकील ने जब देखा कि 5000 एक दिन में लोग बैत कर रहे हैं और हालात साजगार हैं, लोग जोग दर जोग आते जा रहे हैं और बैत होते जा रहे हैं, आपने ख़त लिख दिया कि ए इमाम हुसैन आप आइए कि यहाँ पर हालात साजगार हैं, अब लोग आपके दीदार के, आपकी बैत के मुश्ताक हैं, लोग आपकी बैत करेंगे। इधर से खत लिखा, इधर से कूफियों ने बददियानती की, अहद शिकनी की, आपको शहीद किया। जब शहीद करने लगे तो ऐसा ये पढ़कर ना एक कैफियत होती है कि मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला रोने लग पड़े। तो एक यजीदी ने कहा कि मौत के डर से रोने लग पड़े हो। कहा मैं मौत के डर से नहीं रो रहा, ये शहादत तो ये वो जाम पीने के लिए मैं हम तरसते हैं। कहा कि इसलिए नहीं रो रहा, मैं रो इसलिए रहा हूँ कि मैंने तो इमाम हुसैन की तरफ खत लिख दिया है, वो आ रहे होंगे, तुमने मेरे साथ क्यों किया, हुसैन के साथ क्या करोगे? तो ये बहुत से मामलात थे कि जो इस बात पर जमा करने पर मजबूर थे कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो करबला की तरफ आपने, फिर इराक की तरफ आपने सफ़र किया। फिर आगे मामलात, फिर वो 3 दिन तक पानी भी बंद है, फिर जो जुल्म यजीद की तरफ से और यजीदियों की तरफ से था, मुख्तसर काफिला जो बैत लेने के लिए आया था, बैत तो लगी यजीदियों ने, लेकिन इसके सिले में क्या किया इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भांजों को कुर्बान, भतीजों को कुर्बान, दीगर जो जानसार थे उनको कुर्बान, यहाँ तक कि 6 माह का बच्चा भी कुर्बान, तो 18 साल जवान भी कुर्बान है, और ख़ुद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी शहीद कर दिया गया। इस्लाम की रगों में, इस्लाम की बुनियाद में, जहाँ पर दीगर सहाबा कराम की कुर्बानियाँ हैं, वहीं पर अहले बैत अतहार बिलखसूस करबला की ये कुर्बानियाँ हैं कि आज इस्लाम का ये चमन हमें हरा भरा नज़र आता है। इस्लाम में खुराफात को दाखिल नहीं होने दिया, ना दाखिल होने में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये कुर्बानियाँ, हज़रत इमाम हुसैन के भांजों की, भतीजों की, दीगर जानसारान की कुर्बानियाँ शामिल हैं कि इस्लाम में खुराफात को दाखिल नहीं किया गया।
मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे सैयद साकिब शाह साहब ने एक बहुत मुख्तसर वक्त में बड़ी जामे गुफ्तगू की है कि यजीद पलीद की वो ख़राबियाँ कौन सी थी कि जिस पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने मदीने जैसी सरजमीन चुन, कैसा बद बातिन था, फांसी को फाजिर था, शराबी था, जानी था, बदकार था, और आप निकले नाना जान के दीन को बचाने के लिए। और हम खुद भी सोच सकते हैं कि जो लड़ने के इरादे से जाएगा वो 6 माह का मदनी मुन्ना तो साथ लेके नहीं जाएगा ना, ख़वातीन तो जंग में कहाँ जाएंगी, और वो भी पर्देदार ख़वातीन के, जिनके घर में जिब्राइल भी आए तो इजाज़त लेकर आए, वो सैयदजादियाँ, वो आका की शहजादियाँ, ये तो अपने नाना जान को दीन को बचाने के लिए निकले थे कि अगर मैं स्टेप डाउन करता हूँ, मैं इस यजीद पलीत फासिक आदमी की बैत करता हूँ, तो ये तो एविडेंस प्रूफ हो जाएगा और वो दुनिया की मोहब्बत में गर्क, माल की मोहब्बत में गर्क अंधा कि ये मेरी बैत कर लेंगे तो मेरी हुकूमत का जो है ड्यूरेशन और बढ़ जाएगा, मैं और हाकमियत करूँगा, मेरी हुकूमत और चलेगी। तो देखिए, माल का लालच, ये हुकूमत का लालच, पैसों का लालच, दुनिया का लालच, ये कैसा तबाह करता है, फिर कैसे गुनाहों में बंदा पड़ जाता है कि कितना बड़ा जुल्म। आज आज के दौर में हम दावत इस्लामी के माहौल की बरकत भी है और उलमा अहले सुन्नत और इस तरह आशिकान रसूल की सोहबत और इनकी तालीमात, सैयदी आला हजरत की तालीमात के आज के दौर में हम सैयदजादों का अदब करते हैं कि मेरे आका की ये आल हैं, मेरे आका की नस्ल है, आज सैयदों का अदब करते हैं। इतना ऐसे ऐसे वाक़ात हैं सैयदी आला हजरत के, अमीर अहले सुन्नत के सैयद की बैत भी ना करें कि आका की निस्मत है इनको, और वो तो थे ही आका के नवासे, आका की गोद में पलने वाले, उन पर इतना जुल्म किया, ऐसे ही अंधे हो गए थे। सैयद कजाफी शाह साहब, ये जो यजीद पलीद ने इतनी ये की ये खराबियाँ और इतना बड़ा जुल्म किया, ये दुनिया की मोहब्बत कैसा ये अंधा कर देती है। वाकई करबला से क्या सबक मिला, तो क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए आज हमें। आज हम मोहब्बत के दावे तो सभी करते हैं अपने अपने हिसाब से, वाकई करबला की तशरीह करके ये हुसैनी है, ये यजीदी है, हम वक्त के यजीद को नहीं मानते, ये कूफ़ी है, सब मिसालें देते हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिकल कैसे पता चलेगा हम वाकई हुसैनी हैं कि यजीदी हैं, या हुसैनियत पर अमल कर रहे हैं कि यजीदियत पर अमल कर रहे हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात ये जहन में हमें बिठानी चाहिए कि यजीद या यजीदियों ने ये जो काम किया उसकी बेसिक बुनियादी वजह क्या थी। उलमाए किराम ने इस चीज़ को बयान फरमाया है कि हुब्बे जा, हुब्बे मनसब, हुब्बे दुनिया, ये बेसिक वजह बनी थी।
सही,
यजीद को देख लें या यजीदियों को देख लें,
सही,
यजीद को देख लें या उसके पैरोकारों को देख लें, तो एक रिवायत में आता है कि तुम्हें दुनिया की मोहब्बत तमाम बुराइयों की जड़ है। तो दुनिया की मोहब्बत जो है हुब्बे जा, मनसब की, शोहरत की और इकतदार की, ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो हविस है, ये इंसान को इस कदर जो है वो सफाक बना देती हैं कि बस उससे ये होता है कि मुझे इकतदार मिल जाए, मुझे ये मनसब मिल जाए, मुझे ये हुकूमत मिल जाए, उसके नशे में बंदा धुत हो जाता है। यहाँ तक कि दौलत भी जो है, दौलत को भी बंदा पानी की तरह पैसा बहा देता है। तो हम उमूमी तौर पर ये नज़ारे करते हैं आज के दौर के अंदर भी कि कोई मनसब हासिल करने के लिए, कोई ओहदा हासिल करने के लिए पानी की तरह जो है ना वो पैसा बहाया जाता है। तो पता ये चला कि क्या दौलत जो है ना थोड़ा पीछे रह जाती है, ये हुब्बे जा, इख्तदार, इख्तदार का नशा और इख्तदार का हुसूल कि मुझे एक बड़ा मनसब मिल जाए, मुझे हुकूमत मिल जाए, ये इन चीज़ों को भी पीछे छोड़ देता है। तो खैर, अगर यजीद को देखा जाए और यजीदियों को देखा जाए तो कोई ना कोई मनसब के लिए वो अच्छा जानते थे, मानते थे कि हम मदद कर रहे हैं, उन्हें इस चीज़ का इल्म था, जानते थे, किताबों में लिखा है तारीख के अंदर कि इनको कभी कभी ख्याल भी आया है कि जनाब ये हम गलत कर रहे हैं, हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या है वो इनको दुनिया की लालच, इकदार की अवश्य कि फला जगह की वजारत मिल जाएगी, फला इलाके की हुकूमत मिल जाएगी, फला जगह की हुकूमत मिल जाएगी, उस हुकूमत के चक्कर में इन्होंने ये इतना बड़ा सफाकी वाला काम,
अंधे हो गए,
इतना बड़ा जुल्म किया। क्यों? वो दुनिया की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, हुब्बे जा, हुकूमत का लालच, ये चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें दुनिया में आ गई ना, तो दुनिया की मोहब्बत जो है वो तमाम बुराइयों की जड़ है।
सही।
दुनिया की मोहब्बत ने इनसे ये इतना बड़ा काम करवाया। आज भी देखते हैं कि कई स्टोरीज ऐसी आती हैं कि जनाब भाई भाई का दुश्मन हो गया, वो जी क्या जी ज़मीन का झगड़ा है, जनाब वो बाप बेटे के दरमियान ठनी हुई है।
सही।
वो अब उसके लॉजिक निकाल लें, बीच में से उसके रिसर्च कर लें, पीछे दुनिया की मोहब्बत होती है। तो आज के दौर में भी दुनिया की मोहब्बत ये काम करवा रही है, उस दौर में भी दुनिया की मोहब्बत ने ये काम करवाया। अब हमें सबक क्या मिला? अच्छा देखें, यजीद और यजीदियों ने ये काम किया, दुनिया की मोहब्बत में बदमस्त होके ये सफाकी वाला काम किया। उसके बाद रिजल्ट उसका देखे, अब रिजल्ट क्या निकला, यजीद भी कुछ अरसे की हुक्मरानी के बाद जो है वो दुनिया से चलता बना, और इसकी मौत किस कदर इबरतनाक हुई उस मुख्तलिफ रिवायत बयान की है। एक रिवायत मैंने पढ़ी थी कि जनाब वो जिस किसी औरत के जो है वो मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ, उसने इसे जो है वो बुलाया और ये जंगल में गया, उसने वहीं पर इसको काट फेंका, यानी इसको मार कर वहीं पर जो है वो गिरा दिया, जंगल के अंदर फेंक कर वो चली गई। और हाल ये हुआ कई दिन तक इसकी लाश जो है वहाँ गलती सड़ती रही और जंगली जानवरों की जो है ना वो खुराक गोया के बनती रही। ये समझ लें कुछ अरसे की हुक्मरानी वो इससे गोया के नसीब हुई, और उसके बाद हमेशा के लिए ये ऐसा गोया के दफन हुआ है, इबरतनाक मौत। और आज हालत ये है कि यजीद नाम रखने के लिए कोई तैयार नहीं।
बिल्कुल सही,
ऐसा इबरत का निशान बन गया। अच्छा यजीदियों को देखें, मामला ऐसा हुआ कि चुन चुन कर यजीदियों को मारा गया और एक एक को बड़ी इबरतनाक जो है वो मौतें दी गईं। इसके ऊपर पूरा चैप्टर है कि जनाब किस यजीदियों को कैसे मार पड़ी है और कैसे उसका इंतकाम लिया गया है, किस इबरत की मौत उसे मारा गया है। न यजीद बचा न कोई यजीदी बचे। तो दुनिया की मोहब्बत का अंजाम बड़ा बुरा है। करबला से यह सबक मिलता है कि अगर यजीद की तरह या यजीदियों की तरह किसी ने दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर अगर सफाकी का मामला किया, अगर दीन को छोड़ा, नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीन से मुंह मोड़ा, अगर जुल्म इख्तियार किया, और उसका अंजाम क्या होगा, यजीद और यजीदियों के अंजाम से पता चल जाता है ये अंजाम हुआ। तो सबक ये है कि दुनिया की मोहब्बत जो है उसको हमने अपने सीने में नहीं बसाना है, बल्कि अल्लाह पाक उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन मतीन की मोहब्बत को अपने सीने में मौजन करना है, सहाबा किराम की मोहब्बत को अपनाना है, अहले बैत अतहार की मोहब्बत को अपनाना है, और इनकी मोहब्बत में हमें आमाल जो है वो हुसैन वाले करने हैं।
क्या बात,
अपने आमाल को हुसैन वाला करना है। यजीद वाला अगर अमल किया, ये यजीदियों वाले आमाल किए, तो फिर उसका बड़ा इबरतनाक अंजाम था। इंशाल्लाह हम हुसैन के चाहने वाले हैं, हुसैन के मानने वाले हैं, इंशाल्लाह हम हुसैन की चाहत को भी बढ़ाएंगे और हुसैन वाले आमाल भी अपनी ज़िंदगी में लेकर आएंगे। हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना, हमारे बोलने का अंदाज, हमारे चलने का अंदाज, हमारा जो है सोने जागने का अंदाज, हमारा ओढ़ना बिछोना, हमारे जिस्म से, हमारे जो है वो ज़ाहरी हुलिये से हुसैनियत छलके, हमारा एक एक अमल जो है वो हुसैन के किरदार का गोया के वो बोल बोल कह रहा हो कि हम हुसैनी हैं और हुसैन के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। इंशाल्लाह जो है वो इस जो वाकए करबला से जो हमें सबक मिल रहा है इसको हम ले लें, इंशाल्लाह दुनिया में बेड़ा पार होगा, खबर व आखिरत में बेड़ा पार हो जाए।
क्या बात है, क्या बात है मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन। वाकई ना यजीद रहा, ना यजीदी रहे, ना वो हुकूमत रही, ना वो तख्त रहा, ना वो ताज रहा, और हिस्से में क्या आया, जिल्लत और रुसवाई। बड़ी प्यारी बादशाह साहब ने फरमाई सैयद साहब ने कि आज अपने औलाद का बच्चे का नाम कोई यजीद नहीं रखता, जबकि इमाम हुसैन इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अनु के चाहने वाले दुनिया भर में हैं। मैं एक और बात इस पर अर्ज़ करूँगा कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अनु से मोहब्बत, आका अली सलातुस्सलाम के अस्हाब और आल से मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत, खुलफाए राशिदीन से मोहब्बत, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन अगर किसी मंजिल पर पहुँचना हो तो रास्ते का तयन तो ठीक करना होगा ना। अगर आजकल जैसे मैप आता है, नेविगेशन वगैरह लगा देते हैं मोबाइल पर, अगर उस मैप को फॉलो कर रहे हैं और मैप अगर किसी बंद गली में ले गया, किसी गड़े वाली जगह में ले गया, तो फिर तो अकल भी तो इस्तेमाल करनी होती, आंख बंद करके नहीं चलते। ठीक है, सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है, आज हुसैनियत जाकर सोशल मीडिया पर तलाश करेंगे तो ऐसा ना हो कि कोई हुसैनियत का नाम या लिबादा ओढ़ कर, दो नंबर चीज़ें होती है ना, कोटेड कर दिया जाता है कि जहर के ऊपर शहद की चिट लगाकर भी तो बेच दी जाती है। तो इस तरह के लोग आजकल बैठे होते हैं दीन के फिलोसोफर बनकर, दीन के स्कॉलर बनकर, और जैसा मौजू हो, क्योंकि उनको अपना मंजन अपना चूरन बेचना होता है, और उनको सोशल मीडिया की कमाई के लिए, ये नाम के लिए, ये शोहरत के लिए, अल्लाह बेहतर जाने, कई ऐसे लोग जाना उनको दीन के दाल का पता ना, कोई इल्म दीन ना कुछ, ना उनके अकीदे का ठिकाना, और वो बैठकर जो है वो बयान कर रहे होते हैं, और अल्लाह बेहतर जाने क्या है। लेकिन बचना चाहिए, वो एक शेर है ना कि अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर, अगर जीने की ख्वाहिश है। तो आजकल लोग जो है वो सहूलत पसंद हो गए कि जो है वो सोशल मीडिया पे चले गए, और जैसे आज हमने भी लिया कि वाकई करबला से क्या सबक मिला, हुसैनियत किसे कहते हैं, यजीदियत क्या है। तो अल्लाह का करम है, दावत इस्लामी है, मुस्तनद जो है चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बयान की जाती है। जैसे ये किताब सवाना है करबला, ये नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की लिखी हुई है, और एक और किताब जिसके लिए आला हजरत ने ख़ुद फरमाया कि मुस्तरद किताब है, आयने क़ियामत, ये हसन रजा खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की। तो यूँ मुस्तनद चीज़ें बयान की जाती हैं। बाकी सोशल प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाकर देखेंगे, ऐसा ना हो कि कहीं के कहीं निकल जाएं, सर्चिंग करेंगे, कुछ देखेंगे और पता चला कि दर 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 दर, ऐसा ना हो कि दर बदर हो जाएंगे। तो ईमान अकीदा बहुत अहम चीज़ है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत हो, अहले बैत की मोहब्बत हो, पंजतन पाक की मोहब्बत हो, लेकिन साथ में तमाम सहाबा की भी तो मोहब्बत होना, तमाम खुलफाए राशिदीन की भी तो मोहब्बत होना, मेरे आका अलैहिस्सलाम की आल में अजवाज भी तो आती है ना, ये अजवाज की भी तो मोहब्बत होना। तो ये याद रखिए हमेशा, बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब, ये सोहबतें, ये सोहबत कंपनी जो है, ये लोग पहले जाकर लेते थे, अब बहुत बड़ा अलमिया है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे घर वालों के लिए, कि सोशल मीडिया के ज़रिए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर जब बंदा जाता है तो भटकने के बहुत चांसेज हैं। तो इधर उधर ना जाएं, दावत इस्लामी आपकी अपनी है, मदनी चैनल आपका अपना है, और मुस्तनद चीज़ें देखें, सुने और वही फॉरवर्ड करें। अब कई ऐसे पोस्टें हमें भी लोग कर देते हैं आजकल, फॉरवर्ड मैसेज करने में क्या जाता है, हजरत अली ने फरमाया, कहाँ फरमाया, इमाम हुसैन का फरमान है, कहाँ फरमान है, अल्लाह ये फरमाता है, कहाँ फरमाया, कौन से कुरान की आयत का तर्जमा बयान फरमा रहे, प्यारे आका ने ये फरमाया, हदीस में यह आता है। यानी अपने तौर पर हर बंदा दीन का फिलोसफर बन के बैठा है। सैयद साकिब शाह साहब जो मैंने टॉपिक लिया, ये बड़ा सेंसिटिव है ये, तो ज़ाहिर बात है मदनी चैनल पर एक एहतियात के साथ भी हम गुफ्तगू करते हैं, वरना खराबियाँ बहुत है ये। तो आज हम भी वाकई करबला से क्या सबक मिला, हुसैनियत किसे कहते हैं, यजीदियत क्या है। तो ऐसा ना हो कि नेट पर जाकर हुसैनियत तलाश कर रहे हूँ और कहीं यजीदियत की तरफ चले जाएँ, तो कैसे बचें।
ऐसा वो कहा ना कि चंगे बंदे दी सोहबत,
हाँ हाँ हाँ,
जिमें दुकान अतारा, सौदा पावे मुल ना लइए बुले आण हजारा, बुरे बंदे दी सोहबत यारो जिमें दुकान लोहारा, कपड़े पावे कुंज कुंज बइए छिटा वैण हजारा।
क्या बात है।
अगर अच्छों की सोहबत हमें मुयसर आ जाए, इंशाल्लाह हम अच्छी राह पर चलकर अच्छी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि अच्छों की सोहबत ही हमें अच्छे इमाम हुसैन तक पहुंचाएगी।
क्या बात
है। इमाम हुसैन अच्छे हैं,
अल्हम्दुलिल्लाह,
उनके चाहने वाले अच्छे हैं,
अल्हम्दुलिल्लाह।
अब अगर हमारी सोहबत ही अल्लाह ना करे ऐसी हो, या हमारी सर्चिंग करके इधर उधर की बातें सुनकर और ऑथेंटिक बात जो इसको हम ना सुने, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, तो ये तो अकीदे की खराबी वाकई हो जाएगी। अकीदा बर्बाद हुआ तो जबान से भले कहते रहें हम हुसैनी हैं, लेकिन आपका दिल, आपका दिमाग, आपका जिस्म ये नहीं मानेगा, ना इस शरीयत मुतहरा आपको कहेगी कि आप हुसैनी हैं। हुसैनियत क्या है? क्या हुसैनियत अकीदे की बुराई का नाम है माज़ल्ला? नहीं। क्या सहाबा कराम को बुरा कहना ही हुसैनियत है? ऐसा नहीं है। किसी की गुस्ताखी करके हम हुसैनी बनेंगे? ऐसा नहीं है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की हस्ती तो वो हस्ती है कि जो जोड़ने वाली है।
क्या बात।
इस्लाम की बका के लिए इमाम हुसैन ने अपनी कुर्बानियां पेश की हैं।
क्या बात।
आपने दूसरों को तकलीफ नहीं दी है, आपने अपनी जान के नजराने पेश किए हैं। ये है ना हुसैनियत। ये कहाँ से हुसैनियत आ गई कि हम माहजल्ला अकीदे को बर्बाद कर बैठे? ये तो ईमान का मसला है, आखरत का मसला है, अस्तगफिरुल्लाह। तो अपने आप को बचाने के लिए हमें उलमाए अहले सुन्नत का दामन थामना होगा। मुफ्तियाने कराम जो अहले सुन्नत के जो मुफ्तियाने कराम है, हमें इनका दामन थामना होगा। इंशाल्लाह हमारी दुनिया आखरत सवर जाएगी जो हमें ऑथेंटिक बात इंशाल्लाह जल्द हम तक पहुंचाएंगे, जो कुरान में और अहादीस में है, जो तारीख में ऑथेंटिक बात है। वगरना तारीख में तो ऐसे बहुत सारा कुछ भरा पड़ा है, खुराफात भी भरी पड़ी हैं, लेकिन हम उस तरफ गए तो हम निकल जाएंगे गलत रास्ते पर। तो लिहाजा हमें अच्छों की सोहबत जो उलमाए अहले सुन्नत की है हमें मिलती रहेगी, तो इंशाल्लाह हमें मंजिल तक पहुंच जाएंगे और दावत इस्लामी के दीनी माहौल का, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का प्यारा प्यारा मुश्किल माहौल है, दावत इस्लामी के दीनी माहौल के साथ जुड़े रहे, सहाबा की मोहब्बत के जाम भी पिए और अहले बैत अतहार की मोहब्बत के जाम भी पिए, पिलाने वाले शेख अत्तार हैं, इंशाल्लाह आप पीते जाए अमीर अल सुन्नत पिलाते जाएंगे ये इसको मोहब्बत के जाम।
बात मेरे बदानी चैनल के नाजरीन, बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब, अमीर अल सुन्नत ने अपने कलाम में एक शेर लिखा है, महफूज शाह रखना सदा बे अदबों से, महफूज शाह रखना सदा बे अदबों से, और मुझसे भी सरजद न कभी बे अदबी हो।
आमीन।
यानी कैसे माशाल्लाह अपने कलाम में ये क्या आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं कि महफूज शाह रखना सदा बे अदबों से और मुझसे भी सरजद न कभी बे अदबी हो। और फिर सहाबा और अहले बैत की शान में क्या अमीर अहले सुन्नत ये अशआर लिखे हैं, सुनिएगा कि क्यों ना हो रुतबा बड़ा अस्हाबो अहले बैत का,
वाह,
ए खुदाए मुस्तफ़ा अस्हाबो अहले बैत का, आलो अस्हाबे नबी सब बादशाह हैं बादशाह, मैं फकत अदना गदा अस्हाबो अहले बैत का, मेरी झोली में ना क्यों हूँ दो जहाँ की नेमतें, मैं हूँ मंगता मैं गदा अस्हाबो अहले बैत का, या इलाही शुक्रिया अत्तार को तूने किया शेर गो मिदहत सरा अस्हाबो अहले बैत। वाकई बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब। तो इन क्या कहेंगे मुबारक हस्तियों का आपस में कैसा रिलेशन, कैसी मोहब्बतें और इनका कैसा मुबारक रिश्ता ये अल्हम्दुलिल्लाह होता था, कैसा एक दूसरे का अदब करते, मोहब्बतें करते, मोहब्बतें बांटते, मोहब्बतों से मिलते, तो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं ये। तो मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, करबला 10 मुहर्रम गुजरती है तो ये वाक़यात हम सुनते हैं वो करते हैं ये, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, क्योंकि लास्ट सैटरडे पाकिस्तान में जो लास्ट सैटरडे गुजरी है हफ्ते वाले दिन 10 मुहर्रम थी, तो आज समझ लेंगे 8-9 दिन तकरीबन गुजरे हैं, एक इतवार के बाद ये दूसरी इतवार, या आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो अभी तो कुछ यादें और बातें होती हैं, वो बातें गुजरती हैं। अच्छा, किसी को कोई तकलीफ़ आती है तो करबला वालों की तकलीफ़ याद कर लेते हैं कि देखो उन पर भी तो इतनी आई, लेकिन आहिस्ता 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 वो कैफियत कम होती रहती है। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, के ये जब 3 दिन भूखा प्यासा रखा गया या आका अलैहिस्सलाम की आल को औलाद को, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनके रफ़का, उस कंडीशन में भी इनके खेमों से भूखे प्यासे हैं, करबला का तपता हुआ सहरा है, नमाज ना छूटी, अजान की आवाज़ आती, बाजमात नमाजें होती, खेमों से तिलावत कुरान की आवाज़ें आती, यानी उस वक्त भी आमाल ना छूटे। और आज हमारी हालत क्या है, आम हालत में ज़रा सा बुखार हुआ, नज़ला खांसी हुआ, मेहमान आ गए, बारिश हुई, वेदर ऐसा हुआ, कोई सेरेमनी है तो नमाज छोड़ देते हैं और कहते हैं हम हैं हुसैनी, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले। तो वाकई करबला से क्या सबक मिला, अपने अपने हिसाब से हमने सबक ले लिए, कहाँ गई नमाजें, कहाँ गया तिलावत कुरान, वो तो अपने सरे मुबारक पर इमामे का ताज सजाते थे, चेहरे मुबारक पर आका की सुन्नत दाढ़ी होती, और क्या अखलाक, क्या किरदार, क्या सबर। इसी तरह इस्लामी बहनों को देखे, सबसे नंबर वन तो सबर, कैसा सबर किया उन सैयदजादियों ने, उन शहजादियों ने, मेरे आका अलैहिस्सलाम की शहजादियाँ, के वो सैयदजादियाँ कि किसी का सुहाग उजड़ रहा है, किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का बच्चा शहीद हो रहा है, खाको खून में तड़प रहे हैं, लाशें पड़ी हुई है, कोई दफनाने वाला नहीं, कोई कफन देने वाला नहीं, और इस बेबसी बेकसी और 3 दिन की भूखी प्यासी वो सैयदजादियाँ, लेकिन पर्दा ना छोड़ा, पर्दा ना छोड़ा, किसी पर्देदार खवातीन। आज इस्लामी बहनें इनसे बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की इन कलियों से, इनकी शहजादियों से मोहब्बत का दम तो बढ़ती हैं, बीबी फातिमा से मोहब्बत का दम तो बढ़ती हैं, लेकिन कहाँ है हमारा पर्दा, कहाँ है शरीयत पर अमल, कहाँ है नमाजें, कहाँ है तिलावत। गौर तो करें कि मोहब्बत का दावा अपनी जगह पर, मोहब्बत तो करनी चाहिए, मोहब्बत की बरकतें हैं, लेकिन मोहब्बत दलील भी तो मांगती है ना, प्रैक्टिकल अमल क्या है, प्रैक्टिकल अमल हमारा है हुसैनियत पर या क्या है। जैसे हमारे सैयद साहब ने फरमाया कि यजीद पलीद शराबी था, क्या हमारे मुआशरे में शराब आम नहीं है, ये जानी था, बदकार था, तो आज हमारे मुआशरे में ये बदकारियाँ आम नहीं है, आंखों से गुनाह नहीं करते, बदकारी नहीं करते, जबान से फौश कलामी नहीं करते, सूद इसने आम कर दिया था तो आज सूद का लेन देन नहीं करते, यानी क्या कुछ नहीं हो रहा हमारे मुआशरे में, जहाँ देखें जिस घर जिस गली जिस महल में जिस इलाके में तबाही आई हुई है। मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, मुसलमानों के इलाकों में, हमारा मुसलमान मुल्क है, क्या शराबें नहीं होती यहाँ पर, और दिगर ज़राए से नशा नहीं करते, ड्रग्स यूज़ नहीं करते, बेपर्दगी आम नहीं हो रही है क्या, बेहयाई आम नहीं हो रही है? तो सैयद साहब ये टॉपिक तो बड़ा सेंसिटिव है, अब सारी बातें की तो कुछ कैफियत तबीयत ऐसी हुई कि इन्होंने इतनी बड़ी दीन के लिए कुर्बानी दी, घर छोड़ा, मदीना छोड़ा और नारा जान के दीन को लेकर चले, आज हमारी हालत क्या है, कैसे हमारी हालत बदलेगी? ये
पहले हम ये गौर करें कि हम हुसैन के चाहने वाले हैं, हुसैन के मानने वाले हैं। देखिए आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एक रिवायत मौजूद है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ।
क्या बात,
हुसैन की मोहब्बत जो है ये हर मोमिन का गोया के एक जेवर है और मोमिन की पहचान है हुसैन। जब हुसैन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मारके की बात आती है ना, तो फिर वहाँ बात आती है दीन की, इस्लाम की। तो अब गौर करें कि हुसैन से मोहब्बत, हुसैन से चाहत, ये तो समझ लें कि दीन का इन मानों में हिस्सा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इनकी मोहब्बत, इनसे मोहब्बत रखने की हमें तलकीन इरशाद फरमाई है और ये चलता आ रहा है सिलसिला कि अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये देखना है कि हमें हुसैन से मोहब्बत है, जिस ज़ात से हमें मोहब्बत है, जिस ज़ात से हमें चाहत है, जिस ज़ात से हमें प्यार है, उस ज़ात का पहले ये देखना है कि उस ज़ात का अपना अकीदा क्या है। देखिए एक हम कहते हैं ना मुस्तनद चीज़, तो ये बात तो मुस्तनद है ना कि हुसैन कुरान के मानने वाले थे और कुरान मजीद कुरान हमीद की तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले थे। ये हो नहीं सकता कि कुरान कुछ तालीम दे रहा हो और हुसैन उसकी तालीमात से अलग चल रहे हों। नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहादीस करीमा, आका अलैहिस्सलाम के फरामीन, हुसैन वो है जो कुरान के मानने वाले और कुरानी तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले हैं। हुसैन वो है जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को मानने वाले और आप अलैहिस्सलाम की फरामीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारने वाले हैं। हुसैन से ये भी हो सकता कि जिनसे हम मोहब्बत कर रहे हैं, जिनसे हम चाहत कर रहे हैं, वो हुसैन जो हैं उनका कोई अकीदा कुरान के ख़िलाफ़ हो, उनका कोई अकीदा हदीस के ख़िलाफ़ हो, उनका कोई अमल कुरानी तालीमात से हट के हो, उनका कोई अमल नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहादीस से, आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत से हट के हो, तो सबसे पहले है कि हमें ये गौर करना है मेरा अकीदा हुसैन वाला है या नहीं।
क्या बात,
तो सबसे पहले, और अकीदा कहाँ से मिलेगा? कुरान और हदीस से मिलेगा ना।
सही,
कुरान और हदीस से अकीदा मिलेगा। तो पहली बार ये देखना है कि मेरा कहीं अकीदा कहीं आगे पीछे तो नहीं है।
सही,
तो मैं अपने अकीदे को हुसैन वाले अकीदे पे ले।
क्या बात, क्या बात।
उसके बाद आगे देखें कि अमल,
अमल
ठीक है, मेरा अमल हुसैनी है या नहीं है, हुसैन वाला अमल है या नहीं। हुसैनी अमल कौन से वाला है? हुसैनी अमल है कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला। हुसैनी अमल वो है जो कुरान के मुताबिक है, हुसैनी अमल वो है जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक है। और ये मुस्तनद चीजें हैं ना
जी, हाँ,
ये कहीं तारीख में नहीं लिखा हुआ, ये कुरान बिल्कुल ऑथेंटिक चीज है हमारे सामने। अहादीस करीमा नबी पाक अलैहिस्सलाम की ये भी तवातुर के साथ हमारे पास मौजूद है, खजाना मौजूद है अहादीस के कुतुब की सूरत में। तो कुरान और हदीस हमारे पास मौजूद है। हुसैनियत ये है कि अपना अकीदा जो है वो कुरान और हदीस के मुताबिक ले आए, अपना अमल, अपना किरदार हुसैन के किरदार जैसे, और किरदार कहाँ से मिलेगा? वो कुरान और हदीस से मिलेगा। तो पहली बात तो ये, फिर अपना अपना वजह करता जो है, जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, जिनकी मोहब्बत का दम भरते हैं, उन हुसैन जैसा अपनी वदा कदा भी कर लें।
क्या बात,
अपना हुलिया भी हुसैन जैसा कर लें।
क्या बात।
अब देखें हुसैन के सर पर इमाम शरीफ का ताज था, ज़हीर नसीब कि हम भी इमाम शरीफ का ताज पहने जो है वो सजाने वाले बन जाएं। तो हुसैनियत ये है कि सर पर इमामे का ताज सजा लिया जाए।
क्या बात, क्या बात।
उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात में मिसवाक है, तो भाई मिसवाक को अपना लेना हुसैनियत है। अच्छा, मजीद देखिए कि फ़राइज की पासदारी करना हुसैनियत है, फजर की नमाज़ पढ़ना हुसैनियत है, जोहर की
नमाज बाजमा अदा करना हुसैनियत है, असर पढ़ना, मगरिब पढ़ना, इशा पढ़ना, यानी अपने फ़राइज़ की पासदारी करना, रमज़ान में सारे रोज़े रखना, ये हुसैनियत है। तो हुसैनियत पर अमल ये है कि हर फर्ज पर अमल करना हुसैनियत है, और हमने हुसैनियत को अगर उजागर करना है तो हमारा लिबास हुसैन जैसा हो जाए, हमारे चेहरे पर दाढ़ी शरीफ है, हजरत इमाम अली मकाम के चेहरे पर दाढ़ी थी और एक मुट्ठी दाढ़ी रखना नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। उलमा ने इसे वाजिब का दर्जा करार दिया कि एक मुट्ठी दाढ़ी रखना वाजिब है। तो अब हुसैनियत यह है कि चेहरे पर दाढ़ी शरीफ सजा ली जाए, हुसैनियत यह है कि लिबास हुसैन जैसा कर लिया जाए। हुसैन हम चले ना तो कोई बोले, हमें देखकर बोले ये हुसैन का दीवाना जा रहा है, ये हुसैनियत का पैकर जा रहा है, ये हुसैन का मानने वाला जा रहा है। हमें मुश्किल वक्त आए, परेशानी आए, तब उस मुश्किल वक्त के अंदर भी करबला वालों की याद बनाते हुए हम नमाज बाजमात का अहतमाम करें, हम नमाज ना छोड़ें, तो क्या होगा कि भाई ये हुसैनियत का मानने वाला है, ये इसकी रग रग में हुसैनियत है, क्यों इसका किरदार से हुसैनियत झलकती है। तो हुसैनियत कहते हैं हुसैनियत जिंदाबाद, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ये नारा लगाने वाले हैं, हुसैनियत जिंदाबाद है, यजीदियत हमेशा के लिए मुर्दाबाद है। तो हुसैनियत जिंदाबाद है तो भाई मेरे अमल में भी जिंदाबाद है, मेरे किरदार में भी जिंदाबाद है, मेरे जो है ना वो घर के अंदर भी जो है वो तिलावत कुरान पाक की आवाज आए, मेरे घर के अंदर भी हुसैनियत जिंदाबाद की यूं सदा निकले कि मेरे घर पे भी किरदार ऐसा हो, मेरे घर में भी नमाज की पासदारी हो, मेरे घर के अंदर भी जो है वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नतों का राज हो, जिनकी तालीम को, जिनके दीन को मोडिफाइड जो है वो यजीद पलीद कर रहा था, उस मोडिफिकेशन को बचाने के लिए तो हुसैन मैदान में लिखा है ना। मेरे अंदर अगर हुसैनियत है, मेरे घर के अंदर हुसैनियत है, हुसैनियत झलकनी चाहिए। हुसैनियत नाम है किरदार का, हुसैनियत नाम है नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करने का, हुसैनियत नाम है अल्लाह तबारक व तआला के कुरान इसकी तालीमात पर अमल करने का। आइए हुसैन की मोहब्बत में हुसैनियत के पैकर बन जाते हैं इंशाल्लाह। देखें हुसैन का बेड़ा पार ऐसा हुआ है कि जन्नत के नौजवानों का सरदार है, और जिन्हें सैयदुश्शुहदा कहा जाता है। तो अगर इनके नक्शे कदम पर चलते हुए हमने हुसैनियत का दामन पकड़ लिया, इंशाल्लाह दुनिया भी सवरेगी, कब्र भी सवरेगी, मैदान महशर की रुसवाई से बचेंगे, और हुसैनियत का परचम थामने वाले इंशाल्लाह हुसैन के नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत पाकर आका अलैहिस्सलाम के कुर्ब में जन्नत में पहुंचने वाले बन जाएंगे।
क्या बात है मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, सैयद कज़ाफ़ी शाह साहब मदनी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त बात फरमाई कि वाकई करबला से क्या सबक मिला और हुसैनियत कहते किसे हैं प्रैक्टिकल, बड़ी प्यारी बात। चूँकि प्रोग्राम का टाइम हमारा लिमिटेड होता है, एंड की तरफ है, तो सैयद साकिब शाह साहब से मैं अर्ज़ करूँगा कि आज का मौजू जो है ये वाकई ऐसा है कि ठीक है, 10 मुहर्रम आई, नजर व नियाज भी हुआ, करबला वालों का जिक्र भी हुआ, हम भी कर रहे हैं, और सैयद कज़ाफ़ी शाह साहब ने बहुत डिटेल से बहुत अच्छे अंदाज में बताई, हमने भी कुछ अर्ज़ की, अब बिल्कुल एंड है। तो आखिर में साकिब शाह साहब, ये आदत जैसे कज़ाफ़ी शाह साहब ने भी फरमाया, ये जमे कैसे, बने कैसे कि हमारे अंदर भी, हमारे बच्चों के अंदर भी उससे नियत आ जाए। करबला की जो पर्देदार बीबियाँ थीं, उनका कोई पर्दे का सदका हमारी घर की खवातीन को भी मिल जाए, और हमारे इस घर में, मुआशरे में हुसैनियत जो है वाकई कहा कि जिंदाबाद तो कहते हैं अपने तौर पर जो बन पड़ता है, लेकिन वो अमल इस पर इस्तिकामत कैसे मिले, कैसे कायम रहें ये?
अच्छा, एक तो ये है कि हमें पता होना चाहिए, जिस तरह माशाल्लाह कज़ाफ़ी शाह साहब ने बड़ी डिटेल के साथ माशाल्लाह सारा कुछ बता दिया है, एक काफ़ी हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाह बता दिया है कि हुसैनियत क्या है। हमें सबसे पहले तो इल्म होना चाहिए सही हुसैनियत क्या है,
सही
या वाकया करबला से हासिल होने वाला सबक क्या है। हमारी नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए, फिर वहाँ पर सब्र के पैकर हैं, खुद भी कुरान पढ़ रहे हैं और जो पर्दे में है उनको भी कुरान पाक की तिलावत, तो कुरान पाक की तिलावत हो, खुद भी हो, और फिर दूसरा ये है कि हक का साथ दिया जाए, हक का साथ दें। कई एक मामलात में ऐसा होता है, हमें पता है कि वकला जजेस को भी यहाँ पर ये गलती है, ये इसकी गलती है, लेकिन कहीं अल्लाह ना करे कि ये पैसे की खातिर हम गलत का साथ ना दे दें, हक का साथ दें। इस तरह के कई एक और पहलू निकलते हैं जो वाकया करबला से। सबसे पहली बात,
हमें पता होना ज़रूरी है। से बोध जब हमें पता होगा अब अमल करना आसान, अमल करवाना आसान होगा। मुझे पता ही नहीं है नमाज की अहमियत, कहीं नहीं पता, मैं हुसैनी हूँ, मैं हुसैनी हूँ, मैं दावा करता हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितने नमाज़ी थे, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रातें कैसी शब्बेदारी में गुजरती थी, उनकी उनके खौफ खुदा का आलम क्या था, उनके सजदों का आलम क्या था, उनकी किरात कुरान का आलम क्या था कि वो ऐसा कुरान पढ़ने वाले, ऐसे कुरान के फिर नेज़े की नोक पर भी कुरान सुना रहे हैं, ये क्या था। मालूम होगा अब अमल करना आसान होगा। आपके सब्र के बारे में हमें पता हो कि आपने कैसा कैसा सब्र किया है, लोगों के तानों का, लोगों के ना जाने कितनी बातों का सब्र, और फिर वाकई करबला में एक तरफ यजीदी फौज, एक तरफ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, भांजे भतीजे, सबको सब्र की तलकीन की जा रही है, सब्र सब्र सब्र, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो हमें पता होना चाहिए, इल्म हो। अब इल्म हासिल करने के लिए क्या है कि हम जो ऑथेंटिक किताबें हैं उनका मुताला करें, जो उलमाए अहले सुन्नत हमें किताबों का इरशाद फरमाए उनका मुताला करें, अच्छी सोबत इख्तियार करें। ज़्यादा अगर हम मुश्किल अबहास में नहीं पढ़ सकते, या बहुत ज़्यादा किताब बीनी का अगर शौक़ नहीं है, मुताले का अगर किसी को शौक़ नहीं है, मदनी मुज़ाकरा में शिरकत करें। अल्हम्दुलिल्लाह हफ्तावार इज्तिमाआत में बयानात होते हैं, मदनी चैनल इन दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह कई एक प्रोग्राम, आज भी हम प्रोग्राम करें, हालांकि 10 मुहर्रम अल हराम तो गुजर चुकी है, एक हफ्ता मजीद गुजर चुका है, लेकिन हम आज इस टॉपिक को तो लिया हुआ हमने। तो ये क्या है, मदनी चैनल के साथ मुंसलिक रहें, नेक लोगों के साथ वाबस्ता रहें, उलमाए अहले सुन्नत से वाबस्ता रहें, इंशाल्लाह हमारी कदम कदम पर रहनुमाई करेंगे। अब जो हमने सीख लिया अब हम पर लाजिम है कि हम अपने घर वालों को सिखाएं, अपने बच्चों को सिखाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दबू औलादकुम सलासत खिसाल, हुब्बा नबीकुम व हुब्बा अहले बैति व तिलावतुल कुरान, कि अपनी औलादों को तीन खसलतें, तीन आदतें सिखाओ, सीखेंगे तो सिखाएंगे कि नबी की मोहब्बत, मेरी आल की मोहब्बत और कुरान पाक की तिलावत। तो सबसे पहले यह है कि हमने खुद अमल करना है, सरापाए तरगीब बनना है, कहा ना किसी को तरगीब दिलाने के लिए पहले खुद सरापाए तरगीब बने। आप खुद नमाजी बने, आपका बच्चा आपको देख के नमाजी बन जाएगा। आप सच बोलने वाले बने, आपका बच्चा आपको देख के सच बोलने का आदि बनेगा। आप अपने आप को बदनिगाही से बचाएं, आपकी औलादें आपके घर में आप देखें सब। ये क्या है अजब, वो यही है कि हमने अगर तरगीब दिलानी है पहले खुद सरापाए तरगीब बनना है।
सही,
हुसैनियत को हमने अपनाना है, जब हम अपना लेंगे तो हमारे घर वाले भी अपना लेंगे।
क्या बात है मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, वाकई मौजू बहुत तवील है और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हमारे मुबल्लिगीन ने की। मैं आखिर में, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम तकरीबन एंड पर है, तो आपसे इजाज़त चाहने से पहले मैं एक बात और अर्ज़ करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के प्यारे माहौल में 8-9-10 मुहर्रम और इस साल तो 9-10-11, क्योंकि जुमा हफ्ता एतवार दो छुट्टियाँ, तीन छुट्टियाँ यूँ मिल गई, तो 9-10-11 मुहर्रम भी मदनी काफिलों में सफ़र हुआ, 8-9-10 भी हुआ, बल्कि फ़र्स्ट मुहर्रम से 12-12 दिन के एक एक माह के मदनी काफिलों ने सफ़र किया। तो ये राह खुदा का सफ़र भी वाकई करबला की यूँ एक याद या झलक कि इन्होंने भी सफ़र किया तो हम भी राह खुदा में सफ़र करें। तो अभी जो अगस्त का महीना चल रहा है इसमें 12, 13, 14 अगस्त, इसमें भी दो छुट्टियां आ रही हैं, 14 अगस्त की भी छुट्टी हमारे वतन में होती है, हमारे वतन अजीज़ का जो है वो आज़ादी का दिन है, तो 14 अगस्त चलो यूँ कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को तरक्की दे, उरूज दे, महंगाई का तूफ़ान ख़त्म हो, अमन अमान हो, सुकून हो ज़िंदगियों में, तो इस नियत से राय खुदा में सफ़र कर लें। तो 12, 13, 14 अगस्त को पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों, मुख्तलिफ शहरों से मदनी काफिले सफ़र करेंगे। तो मेरे जितने इस्लामी भाई हैं ये ख़ुद सफ़र करें, दीगर को दावत दें। इस्लामी बहनों से अर्ज़ करूँगा कि अपने घर के महारिम को दावत देकर मदनी काफिलों का मुसाफिर बनाएँ और हर माह 3 दिन मदनी काफिले में सफ़र करते रहें। तो ये भी हुसैनियत को याद करने का एक तरीका है कि खाली 8-9-10 मुहर्रम को सफ़र करके फारिग नहीं हो गए, बल्कि अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया है कि ज़िंदगी में यकमुश 12 माह, हर 12 माह में 30 दिन यानी 1 माह और हर माह 3 दिन मदनी काफिले में सफ़र किया जाए। तो 12, 13, 14 अगस्त की भी दावत कबूल फरमाइए, मदनी काफिलों में सफ़र कीजिए, अल्लाह करीम अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
आफियत दे मेरे।